बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्ति दिव्येस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति अमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति अमयोगिनो यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं बोलिए सच्चिदानन्द भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणावरणाय प्रभु की असीम हेतु की कृपा के साथ हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय को लेकर विचार कर रहे थे। 48वां श्लोक था। योगस्त कुरु कर्माणि संगत्वादनञ्जयः सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोगमुच्यते। संगतत्वा धनंजय। धनंजय नाम प्राण का भी है और धनंजय नाम अग्नि का भी है। यहां धनंजय शब्द से भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हैं। धनंजय माने प्राण के समान पवित्र और अग्नि के समान तेजस्व स्वरूप जो हमारा निज स्वरूप है, उस निज स्वरूप आत्म भाव में स्थित हो, आसक्ति को छोड़कर संग तत्वा संग आसक्ति को छोड़ करके स्वस्वरूप आत्मस्थ भाव में स्थित होना बुद्धि का। संसार में बार श्रीमद् भगवत गीता जी के को लेकर विचार करेंगे तो अनेक बार भगवान ने इस शब्द को विशेष करके बल देकर कहा कि आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति ही दुख का कारण है। और आसक्ति कहाँ है? बोले जहाँ राग है। राग से आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति का सीधा सा अर्थ है आसक्ति माने आसक्ति है कभी भी कहीं भी। इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, कभी भी कहीं भी ये आ सकती है बिना रोक टोक के। आ तो सकती है, बड़ी सहजता से बड़ी सरलता से आ जाती है। आ गई आ सकती, भागवत में आपने जड़ भरत की कथा सुनी, आ गई आ सकती। योग वशिष्ठ में कथा आती है कि एक ऋषि बालक को केवल एक मृगी के स्वर को सुनकर, मृगी के पुत्र थे और उन्होंने बड़े ही तेजस्वी बालक थे, कथा आती है कि एक बार योग वशिष्ठ में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, अनावृष्टि हो गई, वर्षा बरसनी बंद हो गई, अकाल पड़ गया। राजा को बड़ी भारी चिंता है कि ये अकाल से सब जनता पीड़ित है, दुखी है, इनका कष्ट दूर हो, वर्षा बरसे। बोले कहा महाराज, आपके राज्य में किसी तपस्वी ऋषि का जब आगमन होगा तो उनके तप के प्रभाव से वर्षा बरसेगी। बोले इस समय ऐसा तपस्वी संत, बोले एक बहुत अच्छे संत हैं, तपस्वी हैं, जंगल में बैठ करके वो तप कर रहे हैं। उनके पिता श्रृंग ऋषि ने मन में ये निश्चय किया था कि मैं इस बालक को सब प्रकार से विषयों से आसक्तियों से दूर रखकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो विषय हैं, इन विषयों से मैं अपने बालक को बचाकर रखूंगा, इसमें इसे किसी प्रकार की कहीं आसक्ति न हो। ऋषि श्रृंग ने उन बालक को नगर का मार्ग न दिखाकर जंगल का मार्ग दिखाया था और ऐसे स्थान पर उनको रखा कि जहां उन्हें उनके अतिरिक्त और दूसरा कोई दिखाई न दिया, न कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई पड़ता है। बालक तप कर रहे थे, तप करते रहे, बड़े धीरे धीरे उनका तप का तेज बढ़ता चला गया और इतने बड़े तपस्वी तप तेज बढ़ रहा था। कहा कि ऐसे संत को लाना चाहिए। विचार किया राजा ने कि लाया कैसे जाए, इस बालक तक पहुंचा कैसे जाए। यदि कहीं ये बात मालूम पड़ गई ऋषि श्रृंग को कि उनके बालक को नगर ले जाया जा रहा है तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए एक युक्ति लगाई कि ये बालक का जन्म हुआ किससे है। बोले इनकी माता मृगी है, तो मृगी को शब्द से आसक्ति होती है और शब्द सुन बड़े मृग कान लगा करके शब्द को सुनते हैं, संगीत प्रिय है। कहा कि माँ का संस्कार बालक के अंदर कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप से निवास करता है, इसलिए बालक की सहज संगीत में प्रीति होगी। और ये सोच करके जिस समय ऋषि स्नान करने के लिए नदी में जाते, संध्या वंदन करते और जितनी देर वो नदी में स्नान कर संध्या वंदन करके लौट के आते थे, उतनी देर राजा ने अपने चतुर संगीतज्ञों को बुला करके चुपचाप उन्हें सिखा पढ़ा कर भेजा, जहाँ बालक तप करता हो, ये ऋषि तप करते हो, उनके पास जाकर बड़े प्रेम से आप संगीत का गायन करना, सामवेद का गायन करना। मधुर मधुर स्वर जब बालक के कानों तक पहुंचे, उन स्वरों ने सहसा उनका ध्यान तप से अपनी ओर आकर्षित किया, खींचा, और वह शब्द से आसक्त हुए और खींच करके बड़े ध्यान से सुनने लगे। रोज रोज की इस प्रतिक्रिया को होते हुए देखकर एक दिन ये तपस्वी महात्मा उन तक पहुंच गया है। कहा कि तुम इतने मीठा कैसे बोलते हो? बोले हम बड़े मीठे मीठे फल खाते हैं। मिष्ठान खिलाया, शब्द और उसके साथ रस, स्वादु स्वादु व्यंजन उन्हें खिलाए। उन्होंने पूछा, इतने मीठे मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए, जामुन, गुलाब जामुन आदि खिलाए गोल गोल, तो सोचने लगे ये भी किसी पेड़ में उगते होंगे। इतने मीठे फल तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। बोले ये फल हमारे पास बहुत अच्छे हैं, चलो हम आपको बहुत सारे फल खिलाएंगे। और बहला कर जैसे संत को वापस नगर में लाए, तो नगर में उनके पदार्पण होने के साथ ही जल वृष्टि हो गई। अर्थात जो तप में एकाग्र थे, वो शब्द ने खींच करके उन्हें विषय के साथ जोड़ दिया। अब तो महात्मा तप सब भूल गए और वह अयोध्या में वास करने लगे और अयोध्या के राज भोगों का सेवन करने लगे। तो कहने का अर्थ मेरा ये था, शब्दाशक्ति आशक्ति कैसी सहज बनकर आई, एक शब्द बनकर आई और उसी से आसक्त हुई। आसक्ति है वो संगीत के द्वारा, शब्द के द्वारा भी आसक्ति है, स्पर्श के द्वारा भी आसक्ति है, रूप के द्वारा भी आसक्ति है, गंध के द्वारा भी आसक्ति है। जो सहज से आसक्ति है उसी का नाम आसक्ति है। आ तो सकती है, पर याद रखना जो आसक्ति है उसके लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, वह विचार करने पर जा भी सकती है। आ भी सकती है तो सो जा भी सकती है, छूट भी सकती है। ऐसा नहीं है कि आसक्ति छूट नहीं सकती। हमें इस बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आसक्ति छूटती नहीं है। आसक्ति छूटती है धीरे धीरे। आसक्ति छूटेगी कैसे? छूटेगी, बोले आसक्ति को छुड़ाने के लिए एक ही साधन है, सत्संग। सत्संग संगोप जाए, संग से ही, सत्संग से ही आसक्ति छूट सकती है। इसीलिए भागवत में भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, न योगो न सांख्यो। मैं योग से, सांख्य से अर्थात ज्ञान से, योग से प्राप्त स्वाध्याय से, जप से, तप से, यज्ञ से, छिंद अनुष्ठान आदि से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। यदि यथा सत्संगेन वरुण, मैं यदि प्राप्त होता हूँ तो केवल सत्संग से प्राप्त होता हूँ। क्या? क्योंकि सत्संग ही सर्व आसक्ति का हरण करने वाला है। संग से आसक्ति छूटती है, अर्थात सत्संग से, परमात्मा के संग से ही ये आसक्ति जा सकती है, और अन्यथा इसे जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्संग से जा सकती है, सत्य के संग से जा सकती है। अब हम विचार करें नारायण, हम कहते तो हैं आसक्ति छूटे, पर कितनी देर हम सत्संग में रहते हैं? कितनी देर हम सत्संग में रहते हैं? सारे दिन, एक घंटा प्रेमपुरी में सुबह 7:30 से 8:30 सत्संग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु बाकी समय हमारा कहाँ निकलता है? बाकी समय का हमारा अभ्यास क्या है सत्संग के लिए? अर्थात जिससे सत्संग वो है जो हमारे मन को स्थिर करता है, मन में एकाग्रता आती है। मन में एकाग्रता आए और बुद्धि में समता आए, बुद्धि सम रहे,
और मन एकाग्र रहे। पहली बार मन को एकाग्र करने के लिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि एक छोटे से बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, क्यों कि बच्चे की धीरे धीरे शब्दों के साथ एकाग्रता बढ़े। उसे अनेक प्रकार के उपाय करके बच्चे को शब्द के साथ एकाग्रता कराई जाती है और शब्द के साथ एकाग्रता होने पर उसे शब्द की पहचान होती है और जितनी शब्दों की उस बालक को पहचान बढ़ती चली जाती है, शब्द की पहचान होती है और शब्द के पहचान के साथ ही उसका अभ्यास आगे बढ़ता है और जितना जितना जिस बालक के जितने शब्दों के साथ एकाग्रता बढ़ती है उतना अभ्यास करते 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 वो बालक उस विद्या के एक परिणाम को प्राप्त करने तक वो लगभग लगभग उसे 15-16 साल लग जाते हैं। निरंतर के इतने लंबे अभ्यास के बाद वो बालक किसी परिणाम तक पहुंचता है। अभ्यास कराया गया। एक सांसारिक विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें इतने लंबे अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है तो मन को भगवान में एकाग्र करने के लिए हमें कितने अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। अभ्यास हमारा कुछ नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करोगे और अभ्यास के लिए मनन है, चिंतन है, नित्य ध्यान है, जब तक निरंतर का अभ्यास करें सब मन को एकाग्र करने के लिए बार बार दोहराएं और सत्संग में जाकर सत्य के संग में सत्संग के लिए हम विचार करें कि सत्संग हमें बहुत जरूरी है। पर कितनी देर हमें सत्संग मिलता है मैंने आपको कहा, अर्थात कितनी देर हमारा मन परमात्मा में रहता है और कितनी देर हमारा मन संसार में रहता है। संसार का संग कितना करते हैं और भगवान का संग कितना करते हैं, स्वयं आप अपने में जब दृष्टि डालकर देखेंगे, विचार करेंगे तो हमारा समय अधिक संसार के संग में व्यतीत होता है और भगवान के संग में बहुत थोड़ा समय भगवान के याद में, भगवान के विचार में, भगवान सत्संग में, चाहे सत्संग कथा सुन करके हो, चाहे सत्संग माला से भगवान का नाम जप के हो, चाहे सत्संग पुस्तक पाठ पढ़ करके हो, चाहे सत्संग भगवान का श्रृंगार करके हो, चाहे सत्संग भगवान को भोग लगा करके हो, चाहे सत्संग किसी रूप से भी किया जा सकता है नारायण, अर्थात अपने मन को परमात्मा के संग रखना ही सत्संग है। वो किसी रूप से भी हो सकता है, ध्यान लगा करके भी सत्संग हो सकता है, जप करके भी सत्संग हो सकता है, पाठ स्तुति करके भी भगवान का सत्संग हो सकता है। सत्संग हम सिर्फ इसी को क्यों समझते हैं कि हम किसी संत के चरणों में जाकर कथा प्रवचन सुने तो तभी सत्संग होता है। ये सत्संग तो हमें थोड़ा मिलेगा परंतु हमें निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। तो निरंतर हमारा सत्संग कैसे सुलभ हो, उसके लिए निरंतर के सत्संग के लिए निरंतर उठते बैठते चलते आते जाते खाते पीते हर समय सत्संग में ही हम रहे, सत्संग में ही डूबे रहे, वो संग तो केवल भगवान के नाम का ही संभव हो सकता है। परमात्मा के नाम का यदि स्मरण आपके अंदर बना हुआ है तो समझिए सत्संग चल रहा है, उससे व्रति हट नहीं रही है। यदि उस सत्य में के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण रहने पर ये रहता है कि भगवान मेरे साथ में है, ईश्वर मेरे साथ में है, अपने आप को भगवान के सन्मुख पास रखें। इसीलिए संत हमेशा एक ही बात कहा करते हैं कि भगवत नाम स्मरण करो, भगवत नाम स्मरण करो। स्मरण भी एक सत्संग है भगवान का, आसक्ति को छुड़ाने के लिए, आसक्ति बड़ी दुखदायी है ना। ये आती कितने सहज भाव से, कितनी सरलता से जीवन में आसक्ति आती है। एक उदाहरण मिलता है, एक दासी के रूप में एक राजा के दरबार में एक स्त्री आई और आकर उसने राजा के आगे बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि महाराज मैं नहीं जानती हूँ मैं कौन हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ, अबला हूँ, असहाय हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए आपसे आश्रय लेने आपके पास चली आई हूँ, आपसे आश्रय लेना चाहती हूँ, सहारा लेना चाहती हूँ। राजा ने उस स्त्री से कहा, अच्छा तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? कहा, महाराज और मैं क्या कर सकती हूँ, एक ही काम कर सकती हूँ, केवल सफाई का काम कर सकती हूँ। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है रहो, आश्रय दिया और उसे सफाई का काम सौंपा। जब सफाई का राजमहल में काम सौंपा गया तो वो स्त्री बड़े प्रेम से सफाई कर, अपने काम को इतनी दक्षता के साथ, निपुणता के साथ करती है, सफाई बड़ी अच्छी करती है, बड़ी अच्छी सफाई करना जानती है और बड़ी अच्छी सफाई करती है। सफाई करते करते उसकी सफाई से राजा बड़े प्रसन्न हो गए, रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, सभी उसके लिए बड़े उसकी प्रशंसा करने लगे, सब तारीफ करने लगी और धीरे धीरे अपने कार्य से सभी को उसने सभी की प्रिय बन गई। और प्रिय बनने पर प्रियता के साथ साथ सबका विश्वास जीत लिया, इतना विश्वास जीत लिया कि राजा के रनिवास तक पहुंच गई और यहाँ तक कि राजा के खजाने तक पहुंच गई। एक दिन अवसर पाकर के, अवसर पाते ही उसने खजाने से सारी संपत्ति लूटी, पोटली बनाई और पोटली बनाकर भाग खड़ी हुई, भाग निकली। जैसे ही पता चला कि दासी खजाने से लूटकर भाग गई है, राजा बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए। जब दुखी होने लगे तो मंत्री बड़ा विचारवान था, सत्संगी था और मंत्री ने कहा, राजन उस स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं है, उसने आने से पहले अपना पूरा परिचय साफ साफ आपको दे दिया था, परिचय यही तो दिया था कि राजन मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, केवल सफाई करना जानती हूँ। तो आकर वो अपने खजाने की, उसने कहा आपको सावधान किया, आप नहीं समझे, उसने तो कह दिया था मैं और कोई काम नहीं जानती हूँ, केवल सफाई करने का काम जानती हूँ, और वो खजाने की सफाई करके चली गई, तो अब आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो कहने का अर्थ था कि ये दासी बनकर आसक्ति जीवन में आती है, ये कुछ पता नहीं है कि कब कहां से चली आएगी, आती है बड़े दैन्य भाव से, दैन्यता के साथ, बड़ी दीनता के साथ जीवन में प्रवेश करती है और करने के बाद धीरे 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 ये आसक्ति सारी आत्म संपत्ति को लेकर भाग खड़ी होती है। अर्थात आसक्ति के कारण, राग के कारण व्यक्ति राग, जहां राग होता है वहां दोष और दुर्गुण नहीं दिखाई देते हैं। राग में कोई दुर्गुण नहीं दिखता, कोई दोष नहीं दिखता, कोई कमी नहीं दिखती है, सब अच्छाई अच्छाइयां दिखने लगती है। और जहां राग आएगा अच्छाई दिखेंगे, निश्चित रूप से उन अच्छाइयों के साथ साथ हमें बुराइयां भी दिखने लगती। अर्थात राग है और हमारे राग में जहां अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ती है वहां हमें द्वेष होने लगता है, बैर होने लगता है, और राग और द्वेष के कारण बुद्धि निष्पक्ष नहीं रह पाती है, तटस्थ नहीं हो पाती है। राग और द्वेष के कारण बुद्धि जिसे सम होना चाहिए था वो सम नहीं रह पाती है, बुद्धि में विषमताएं आ जाती हैं, बुद्धि पक्षपाती होने लगती है और पक्षपात से किया जाने वाला कार्य कभी नारायण वह कार्य कभी निष्काम नहीं हो सकता, वो सकाम कर्म होता है। और सकामता जीवन में जहां सकाम कर्म है वह अत्यंत नूनता है, सकामता में भजन का भी रस चला जाता है। बहुत से लोगों को ये सुनते हुए कहते हुए सुनते हुए मिलते हैं कि देखो भजन तो करते हैं पर भजन करने में रस नहीं आता, भजन तो करते हैं पर क्या करें भजन करने में रस नहीं आता। रस क्यों नहीं आता आपने कभी सोचा? इसलिए नहीं आता कि हम कुछ चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छा है, हमें वो मिल नहीं रहा है इसलिए हमें रस नहीं आ रहा। यदि उस भजन के करते हुए कोई चाह नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि उसमें रस ना आए। हमने भजन किया था, माला फेरी थी, माला फेर रहे थे, इसलिए फेर रहे थे कि इस माला को फेर करके हमारे बेटी बेटी का संबंध हो जाए, बेटे का संबंध हो जाए, नौकरी मिल जाए, माल मिल जाए, काम मिल जाए, कारोबार हो जाए, ये कष्ट दूर हो जाए। परंतु यदि होते हुए नजर नहीं आया तो वो माला फेरते हुए रस भी नहीं आया। विलंब लगा, देर हुई, वो कार्य नहीं बनते दिखाया गया तो हमारा सब रस चला गया। और यदि उसमें हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो हमारा रस बढ़ गया। और रस कितना बढ़ गया, उस वस्तु में इतनी प्रीति बढ़ गई कि फिर उस माला जपने में भी रस नहीं रहा, क्योंकि काम तो हो गया, फिर इसलिए भी उस माला के जपने में फिर वो रस नहीं रहा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि भजन करते हुए रस नहीं आता है, उनको नहीं आता है जो भजन किसी सकामता से करते। इसलिए ऐसा कुछ करो नारायण। एक बार एक भक्त भगवान के पास गया तो भगवान ने उससे पूछा, भैया तुम आए हो तो मेरे लिए क्या लेके आए हो? तुम्हें जो भेजा था तुम आए मेरे पास तो क्या लेकर के आए, क्या ऐसा कौन सी चीज है? उसने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने कहा, भगवान मैंने आपके लिए ये लाया हूँ वो लाया। तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने ऐसा किया, ये यज्ञ किया, ये दान किया, ये तप किया, ये जो जो उसने अच्छे कर्म किए थे वो सब भगवान को बताने। वो तो सबने किया, जो सब तुमने किया वो सबने देखा, ऐसा क्या लाए हो जिसे तुमने तुम्हारे जो लाए हो मेरे लिए उसे किसी ने न देखा हो? ऐसी कौन सी चीज लाए हो मेरे लिए कि जिसे किसी ने नहीं देखा हो? जो कुछ तुमने किया वो तो जग ने सबने देखा, ये सब दिख रहा है, परंतु ऐसी कौन सी चीज तुम मेरे लिए लाए हो जिसे किसी ने नहीं देखा हो? किसी ने नहीं देखा हो। वो सोचने लगा, कहा ऐसा क्या हो सकता है कि जो कोई न देख सके वो सिर्फ आपके अंदर का भगवान के लिए जो भजन है नारायण वो एक ऐसी चीज है। नाम सुमिरन परमात्मा का स्मरण जो आपके भीतर है वो सिर्फ किसके लिए? वो सिर्फ एक भगवान के लिए होना चाहिए, उस पर किसी दूसरे की नजर न पड़े। संसार में हम जो कुछ भी करते हैं हम करते हैं पर किस उसको सब देखते हैं, अर्थात इसे ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो सकता, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही केवल भगवान का भजन होना चाहिए और दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे भगवान की प्रसन्नता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन ही भगवान की प्रसन्नता के लिए हो सकता है। भगवान का भजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमको संसार की इससे इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति होगी, अर्थात कामनाएं जो संसार में है उसी का नाम आसक्ति। संसार की कामनाएं माने आसक्ति, और आसक्ति से भय उत्पन्न होता है ना। आसक्ति से राग उत्पन्न होता है और आसक्ति से भय उत्पन्न होता है। आसक्ति से ही राग और आसक्ति से भय, पूरी आसक्ति पूरी हो गई तो भय उत्पन्न हो गया कि ये वस्तु हमें नष्ट न हो जाए, इसे चोर चोरी न कर ले, उसकी सुरक्षा का भय होने लगा, कहीं बिछुड़ न जाए, अलग न हो जाए, तब भी दुख है। और वो हमें नहीं, कामना पूरी नहीं हुई तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, तब भी हम दुखी हो गए। अर्थात कामना से, आसक्ति से, कामना से भय उत्पन्न होता है, कामना से द्वेष, भय के साथ साथ क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी कामना, इसका मूल कारण क्या है? कामना। और कामना क्या है? आसक्ति। आसक्ति, इसीलिए भगवान ने कहा संगत तक्त्वा धनंजय। तो आसक्ति को छोड़ करके प्राण के समान पवित्र, याद रखना आसक्ति में संकीर्णता है। आसक्ति के छूटने पर व्यापकता है। जब तक आसक्ति है तब तक आपके अंदर संकीर्णता है, और संकीर्णता का नाम ही मृत्यु है। आसक्ति में संकीर्णता है और आसक्ति के जाने पर व्यापकता है, और आसक्ति में मोह है और आसक्ति के छूटने पर प्रेम है। इसलिए आसक्ति, मोह और आसक्ति के छूटने पर केवल केवल प्रेम, और प्रेम व्यापक होता है, प्रेम संकीर्ण नहीं होता। जब आसक्ति छूटती है तब प्रेम उत्पन्न होता है, जब आसक्ति छूटती है तब व्यापकता दिखाई पड़ती है, और जब तक संकीर्णता है, संकुचन है, संकीर्णता है, संकीर्णता में भगवान नहीं मिलते। नारायण भगवान तो मिलते हैं विशालता में। भगवान का नाम ही एक है विशाल, वो विशाल हैं, और विशाल की प्राप्ति करने के लिए विशाल बनना पड़ता है। संकीर्णता में जिन्होंने अपने हृदय को विशाल कर दिया, दक्षिण के यालवर संत हुए हैं, उनकी कथा में कथा आती है कि एक संत एक छोटी सी कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे। भजन करते मुश्किल से वो अकेले बैठे हुए भगवान का भजन कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस कुटिया में हम दो तो सो नहीं सकेंगे, बाहर कभी यदि वर्षा बरस जाए और वर्षा के से बचने के लिए कोई संत आ जाए तो दो तो नहीं इस कुटिया में हम सो सकते। तो मन में विचार करने लगे, जब दो सो नहीं पाएंगे तो दूसरे के आने पर क्या होगा? बोले दूसरे के आने पर दोनों बैठकर भगवान का भजन करेंगे। तो जब भजन, और यही हुआ, सोच ही रहे थे कि इतने में एक दूसरे संत का पदार्पण हो गया, आ गए, बाहर वर्षा बरसने लगे, संत चले आए और कुटिया खटका उन्होंने दोबारे खोला, और दो, अब दो तो लेट नहीं सकते, दोनों बैठकर भगवान का भजन करने लगे। इतने में वो मन में फिर सोचते हैं कि यदि कोई तीसरा अतिथि आ जाए तो तीन तो बैठकर भजन भी नहीं कर सकते हैं, तब क्या होगा? बोले तब तो तीनों खड़े होकर भगवान का भजन करेंगे। ये सोच ही रहे थे कि इतने में तीसरे का आगमन भी हो गया, तीसरे भी आ गए, और जैसे दूसरे के पीछे तीसरा आया, और सोच रहे थे तीनों उठकर खड़े हुए, और जैसे तीनों उठकर खड़े हुए तो मन में सोचने की जी चौथा आएगा तो क्या होगा, यहाँ तो चार खड़े भी नहीं हो सकते, तब सोचने लगे बिल्कुल सट करके खड़े हो जाएंगे। तो इतने में सचमुच चौथा भी आ गया, जैसे ही चौथा आया तो चौथे के आने के साथ वो सब सट कर खड़े हुए, तो एक दूसरे को छूने के साथ ही चौथा तो ऐसा आया कि उसके छूते ही उन संतों के अंदर भी एक ऐसी विद्युत सी चेतना संचारित हुई कि वो सब के सब रोमांचित होकर भगवान का भजन करने लगे आनंद के साथ, क्योंकि चौथा तो उनके पीछे साक्षात भगवान ही थे। भगवान ही स्वयं आए थे। तो भगवान देखते हैं जिसका हृदय विशाल है, जिस हृदय में संकुचन नहीं है, उस हृदय में स्वयं भगवान चले आते हैं। नारायण, हमारा हृदय बड़ा संकुचित हो गया है, इसमें बड़ी संकीर्णता आ गई। बोले संकीर्णता का कारण क्या है? संकीर्णता का कारण है आसक्ति। आसक्ति क्या है? बस ये मैं और ये मेरा, मैं मेरा करके हम पकड़ रहे हैं, पकड़ते पकड़ जिसको हमने मेरा कहकर पकड़ा हुआ है। आसक्ति क्या है? यही तो है ना कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये जिसे मेरा 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 कहते हैं, पकड़कर हमारा हृदय इतना छोटा हो गया है। इस मेरे की पकड़ की हाथ को खोलकर छोड़ करके देखो नारायण, ये हाथ छोड़ो, हाथ को हटा करके देखो। जब तक हाथ बंधा हुआ है तब तक संकीर्णता है, और जैसे हाथ खुला दोनों अलग अलग होते ही व्यापकता हो गई। ठीक उसी प्रकार मैं और मेरा, आसक्ति बस इसी बात की है कि ये मैं हूँ और ये मेरा 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 कहकर जिसे हमने पकड़ा है, ये मेरापन ही समाप्त। जब तक मेरे अंदर मेरा है, कहा कि ये मेरा कहने पर, और ये भी बात याद रखना कि राग की अनुभूति कहाँ होती है, सुख की अनुभूति कहाँ होती है। हमें सुखा अनुभूति होती है, ये बताने में बड़ा सुख लगता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी गाड़ी है और ये मेरी फैक्ट्री है। जब मेरा कहकर हम किसी की ओर इशारा करके बताते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा बांधव है, हम जब मेरा मेरा कहकर हम किसी को संबोधित करते हैं, तो हमें बड़े मन को अंदर आनंद की अनुभूति होती है। ये कहते हुए ये फैक्ट्री है, ये जब ये खेत है, ये पेड़ है, ये पर्वत है, ये कहते किसी को सुख की अनुभूति होती है? ये बताते हुए किसी को अच्छा लगता है? ये हरे हरे खेत है, ये हरे हरे पहाड़ हैं, ये हरे हरे पेड़ हैं, ये फैक्ट्री है, ये कहते हुए जितना सुख नहीं मिलता उतना सुख ये कहते हुए मिलता है, ये बताते हुए मिलता है कि ये मेरा है। अर्थात मेरेपन के जहाँ बांध बांध लेते हैं, वहाँ हमें एक सीमा खींच लेते हैं, एक सीमा खींच लेते हैं, तो हमें बड़ी सुख की अनुभूति होती है। और ये मेरेपन की सीमा खींचने की आदत हमको अब से नहीं, बहुत पहले से, कई जन्मों से, एक जन्म से नहीं, बहुनानी जन्मानी, ये तो निश्चित है कि ये हमारा कोई नया जन्म नहीं है। और नया जन्म नहीं है तो हर जन्म में हमको यही सब कुछ मिलता रहा जो आज हमें मिला हुआ है। और आज जिसे हम मेरा बता रहे हैं, उसे पहले भी हम कई बार दावा कर चुके, मेरा मेरा कहकर पहले भी बता चुके, और इसलिए आदत उसी पूर्व अभ्यास के कारण आज भी अभ्यास पड़ा हुआ है, और यही कहकर बताते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा कहकर हम बताते चले आ रहे हैं। तो याद रखना, अब ये मेरेपन की जो लकीर है, सीमा है, इसे तोड़ना हमारे लिए शक्य कैसे हो, कैसे हम इसे सरलता से छोड़ सकते। तो मेरा 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 कहकर बताते बताते हमने बहुत सी चीजें बहुत कहकर इकट्ठा कर लिया है, परंतु मैं कहती हूँ यदि आप मेरा मेरा कहने में ही आपको सुख की अनुभूति होती है, तो आपने कभी घर अब मेरा कहा, कभी परिवार मेरा कहा, कभी पुत्र मेरा कहा, कभी धन मेरा कहा, कभी सबको मेरा बताया, पर एक को आज से मेरा बताना आरंभ कर देना, ये सांख्य योग सुन करके कि मेरे भगवान, मेरा भगवान, मेरा गोपाल, मेरा गिरधर, मेरा नारायण, मेरा गोविंद, मेरा मेरा भगवान को करना आरंभ करो, तो धीरे धीरे संसार के मेरा मेरापन कम हो जाएगा और भगवान में मेरापन बढ़ने लगेगा। आसक्ति को जीतने के लिए आसक्ति पैदा करनी होगी। आसक्ति को छोड़ने के लिए, एक आसक्ति को छुड़ाने के लिए दूसरी आसक्ति पैदा करनी होगी, पकड़नी होगी। दूसरी आसक्ति भगवान में आसक्ति, क्योंकि छोटे के आगे जब बड़ी चीज कोई सामने आती है तो छोटा स्वयं छूट हट जाता है। इस पर मुझे याद आ रही है कि रामानंद जी महाराज बहुत अच्छे, रामानुजाचार्य बहुत बड़े संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं। रामानुजाचार्य अपने हाथ से भगवान ठाकुर की सेवा पूजा किया करते थे, भगवान की सेवा अपने हाथों से करते हैं, भगवान को बड़े प्रेम से सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनका सारा समय भगवान की स्तुति अर्चना पूजा में ही व्यतीत होता है। एक बार वो भ्रमण के लिए जब निकले तो उनके उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य ये देखा कि एक बालक उल्टा चल रहा था। उसे उल्टा चलते हुए देख करके उन्हें बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, और वापस आने पर अपनी कुटिया में जब आए तो उन्होंने पूछा कि वो बालक युवान उल्टा चल रहा था, सुंदर था, अच्छा था, परंतु उल्टा चल रहा था। तो लोगों ने कहा, हाँ महाराज, वो एक नगर वधु से, विषया स्त्री से उसकी बड़ी प्रीति है, आसक्ति है, और वो ये नहीं चाहता है कि मैं अपनी प्रेमिका की तरफ पीठ करके चलूं। वो हर समय उसकी तरफ अपने मुख को ही रखना चाहता है, इसलिए उसके साथ चलते हुए वो उल्टा चलता है। महाराज ने सोचा कि बालक बहुत अच्छा है, जिसके एक स्त्री पर ऐसी गाढ़ प्रीति है, ऐसी गाढ़ आसक्ति है। महात्मा ने कहा, रामानुज आचार्य ने कहा कि उस बालक को मेरे पास बुलाओ। संदेशा भिजवाया गया, पर बालक आने के लिए आनाकानी करने लगा। महाराज ने, उस स्त्री ने समझाया कि देखो साधु महात्मा है, उनकी बात नहीं मानोगे तो संत रुष्ट हो जाएंगे, रुष्ट होकर कहीं श्राप दे दिया तो तुम्हारा और हमारा बिछोह हो जाएगा, हम लोग बिछुड़ जाएंगे, इसलिए संत को नाराज नहीं करना चाहिए, चले जाओ, उनकी वो क्या कहते हैं उनकी बात सुन लो। स्त्री ने बताया और वो चले गए। जब बालक रामानुजाचार्य के पास पहुंचे तो स्वामी जी ने उससे पूछा, बेटा तुम उल्टा क्यों चल रहे थे? कहा, महाराज बस मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा एक पल के लिए भी अपनी प्रियतमा की ओर पीठ करके चलो। महाराज ने कहा कि तुम्हें उस स्त्री में ऐसा क्या दिखता है? कहा, महाराज बस मेरे नेत्र उस सौंदर्य को पाकर, उस सुंदरता को पाकर ऐसे आसक्त हो गए हैं कि बस मुझे उसके आगे और सारी दुनिया की सुंदरता फीकी नजर आती है। महात्मा ने कहा, यदि तुम्हें इससे बढ़कर के और कोई सौंदर्य दिखाई पड़े तो? कहा, महाराज मैं सोच ही नहीं सकता कि इससे भी बढ़कर के और कोई सुंदरता हो सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तो कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम 11 बजे मेरे पास चले आना। स्वामी जी ने प्रातः ठाकुर को स्नान करा के बड़े प्रेम के साथ नारायण का श्रृंगार किया, भगवान को वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से उनको सुसज्जित किया, तैयार किया, और जैसे 11 बजे थे भगवान के राजोपचार सहित पूजा की थी भगवान की, और जैसे 11 बजे भगवान के श्रृंगार के दर्शनों के लिए पट खुले, दरवाजा खुला, तो बालक को आगे आगे खड़ा कर दिया गया था, और जैसे उसने भगवान की झांकी को निहारा, देखा, तो बस भगवान की झांकी निहारते वो ऐसा आसक्त हो गया कि उसकी दृष्टि भगवान से अपलक टिक गई और उसका मस्तक झुक गया और महाराज के चरणों में ऐसा प्रणत हो गया कि आगे चलकर रामानुज संप्रदाय में उस बालक ने बहुत भारी प्रचार और प्रसार का कार्य किया। आगे चल करके महाराज के प्रमुख शिष्यों में वो बालक बना। तो कहने का अर्थ ये था कि जब उसने वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त किया तो उसके आगे संसारिक सौंदर्य उसे छोड़ना नहीं पड़ा कि वो स्वतः ही छूट गया। उसे उस आसक्ति को छोड़ना नहीं पड़ा, वो स्वतः ही छूट गई। जब तक उसने उस परम सौंदर्य के दर्शन नहीं किए थे तब तक वो संसारिक सौंदर्य का पुजारी था, और जब उसने परम सौंदर्य रूप राशि भगवान की सुंदरता निरख ली उसकी आंख ने, तो उसके पश्चात वो दृष्टि उसकी हटी नहीं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, मेरा मेरा आपने कहा तो है, परंतु मेरेपन का सुख क्या होता है, मेरेपन का रस क्या होता है, मेरेपन का आनंद क्या होता है संसार में। कई बार कई लोगों को आपने मेरा मेरा कहकर पुकारा तो सही, परंतु संसार से आपको जिसे आप मेरेपन का करार दे रहे थे वो आपको कहां धोखा दे गए, पीड़ा दे गए, दुख दे गए और आपको कष्ट दे गए, ये कहां नहीं जा सकता। परंतु भगवान के लिए यदि आप एक बार हृदय की गहराई से मेरापन कह दें तो आपके आगे वो मेरा, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान का सौंदर्य अनंत है, भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, भगवान का ज्ञान अनंत है। तो एक बार मेरा यदि आप उनके कह देंगे तो तब आपका हृदय अनंत के साथ मिलकर अनंतमय बन जाएगा, अनंत प्रेम होगा, अनंत सुख होगा, अनंत शांति होगी, अनंत का आनंद का अनुभव करेंगे, कोई आपके आगे सीमा नहीं रह जाएगी, तब आपका असीम अनंत एक होगा नारायण। इसलिए आसक्ति को जीतने के लिए जैसे आप संसार पर मेरापन जोड़े हुए हैं, वैसा मेरापन परमात्मा के साथ हो जाए। भगवान मेरा है, गोविंद मेरे हैं, नारायण मेरे हैं, बस इस मेरेपन में ईश्वर में अपनी बुद्धि को मैं को लगाना है, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना है, बस जो कुछ है ईश्वर कर रहा है। अपने आप को भगवान के लिए एक यंत्रवत बना लें, यंत्रवत, यंत्र जैसे एक यंत्र चलता है, मैं तो केवल भगवान का एक यंत्र हूँ, मुझे चलाने वाला मेरा प्रेरक, मेरा संचालक, मेरा रक्षक केवल नारायण है। ऐसी ईश्वर बुद्धि आप में स्थित हो जाए। और भगवान कहते हैं, हे धनंजय, अग्नि के समान, अग्नि में तेज है, प्राण पवित्र है, असंग है, प्राण असंग बनकर बहते हैं, असंगता है प्राणों में और अग्नि में पवित्रता है, पावनता, तेजस्विता है। आपका जीव स्वरूप तेजोमय है, तेजस्वमय है। इसलिए भगवान ने कहा, संगत तत्वा धनंजय सिद्धयो अशुद्धयो समो भूत्वा। जब आपके अंदर आसक्ति चिंगल जाएगी, आपकी बुद्धि सम हो जाएगी, तब आपके लिए सफलता और असफलता आपके लिए एक बन जाएगी। जैसे तराजू के तराजू में कोई चीज तोलते हुए, तराजू का पलड़ा कभी कोई नीचे होता है कभी ऊपर होता है, तराजू के पलड़े तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तराजू के ऊपर लगा हुआ गुच्छा अपनी जगह बिल्कुल स्थिर होता है, वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता। उसी तरह से परिस्थितियां आपकी ऊपर नीचे होती रहे हैं, पर परिस्थितियों के साथ व्यक्ति का जो स्थिर बुद्धि है वह ऊंचे नीचे नहीं हो पाती है नारायण। ऊंचे नीचे माने परिस्थितियां कभी अनुकूल होंगी कभी प्रतिकूल होंगी, कभी सफलता होगी कभी असफलता होगी, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी जय होगा कभी पराजय होगा, कभी अंधकार होगा कभी प्रकाश होगा। ये परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल होती रहेंगी, पर इन अनुकूल प्रतिकूलताओं को दोनों को एक समान अनुभव करने वाली एक समान समझने वाली जो आपके स्थिर मति है, आपके भीतर वो स्थिरता है, वो दृढ़ता है, वो मति है, तब आपको उससे उस परिस्थिति से आप व्यग्र नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, आपके अंदर व्याकुलता नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। जीवन में निराश वही होते हैं। निराशा मृत्यु का नाम है नारायण, याद रखना। जीवन में निराश होना ये मृत्यु का काम है। आप जीवन में निराश नहीं होंगे, निराश आपके जीवन में नहीं होगा। कब? जब आपके भीतर समता होगी। इसलिए भगवान कहते सिद्धयो सिद्धो, संसार से निराश, हताश, उदास वो लोग होते हैं, थके मादे हारे वो लोग होते हैं जिनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती है। वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं और वो धीरे धीरे क्षीणता की ओर चले जाते हैं। जो लोग स्थिर नहीं होते, जिन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया आसक्ति को छोड़कर, अर्थात जिनकी आसक्ति न कर्म में है, न कर्म के फल में है और न कर्म के परिणाम में है। जो परिणाम चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जिन्होंने कर्म को केवल कर्म समझकर किया है, कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं रखा है, ऐसे लोग समो भूत्वा, भगवान कहते हैं समत्व योग मुच्यते। योग में सबसे बड़ा जो योग है भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में, योग तो मैंने कहा प्रत्येक अध्याय का नाम योग है। जब योग है, ध्यान योग है, क्रिया योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, योग तो कई प्रकार का योग है, संन्यास योग है, परंतु सबसे बड़ा गीता जी में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में योग है तो अपने को सम कर लेना ही योग है। अपने आप को समचित्त कर लेना ही योग है, समबुद्धि कर लेना ही योग है। समबुद्धि हो, समचित्तता हो, यही योग है नारायण। इसलिए इस योग को जिसने सिद्ध किया है, और इस ये योग सिद्ध होता है ईश्वर बुद्धि से। इस योग का नाम है ईश्वर बुद्धि। सम योग माने ईश्वर बुद्धि, अपनी मति को ईश्वर में स्थिर बना लेना, भगवान से बुद्धि हटने न पाए, अलग न होने पाए, हर पल हर क्षण बुद्धि भगवान में स्थिर बनी रहे, स्थिर बनी रहे, भगवान में लगी रहे, ईश्वर बुद्धि बनी रहे। और उस वो देखता है प्रत्येक घटना को ईश्वर बुद्धि से, वो विचारता है ईश्वर बुद्धि से, वो बरतता है ईश्वर बुद्धि से। उसकी बुद्धि ईश्वर से कभी अलग होती नहीं है, और ऐसा ईश्वर बुद्धि वाला व्यक्ति है समयोगी है। और जो समयोगी है वही संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन से रहित है नारायण। यही समत्व योग है। जीवन में हमने सत्संग किया, प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम कितने साल से सत्संग कर रहे हैं, कितने साल से हम गीता पढ़ रहे हैं, कितने साल से हम उपनिषद सुन रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि ये सब सुन करके हमारे जीवन में कितनी समता आई, कितनी हमारी बुद्धि राग द्वेष से हटी, अपने पराये के इस भेद से मुक्त हुई, कितनी हमारे अंदर समचित्तता और समबुद्धिता आई, समता कुछ अंदर आई कि नहीं। प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम रामदेव बाबा का प्राणायाम करते हैं या पतंजलि का प्राणायाम करते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम किसका योग करते हैं, किसका सिखाया हुआ योग करते हैं, पर ये हमें विचार करना चाहिए कि योग हमारे जीवन में आया कि नहीं। भगवत गीता के आधार पर सबसे बड़ा योगी वही है जिसकी आसक्ति छूट गई है, जिसने अपने आप को आसक्ति से छुड़ा। और आसक्ति छूटने का एक ही उपाय है कितना ही सुनो कितना ही पढ़ो, आसक्ति जब छूटेगी तब केवल सत्संग से, सत्य के संग से। सत्य के संग में हरि संग लगे रहो रे भाई, बनत बनत तेरी बन जाएगी। जुड़े रहो भगवान के नाम के साथ, ईश्वरी सत्ता से अपने आप को कभी अलग मत होने दो। जो उससे छूट गया, टूट गया, जिसने अपने केंद्र से संबंध तोड़ दिया, वो निश्चित रूप से दुर्घटना ग्रसित होगा नारायण। और जो अपने केंद्र के साथ, अपने मैं के साथ जुड़ा है, स्थिरता है, पतंग कितनी ऊंचाई तक जाए कोई चिंता वाली बात नहीं है। यदि पतंग की डोर हाथ में है तो पतंग उड़े कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो तब है जब पतंग की डोर हाथ से निकल जाती है। तो जीवन में अपनी जीवन की कितनी ऊंचाई तक आप पहुंचे अच्छी बात है, परंतु उन ऊंचाइयों के साथ साथ आप विचार करेंगे अपने मूल के साथ आप जुड़े हुए हैं कि नहीं, अपने सम में आप स्थिर हैं कि नहीं। यदि आप सम में स्थिर हैं तो निश्चित रूप से आप योगी हैं, और ऐसा समत्व योगी ही भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में वो परम योगी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवत नाम एक मिनट के लिए स्मरण कर लीजिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।